ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय 11। अध्याय का नाम है वृत्रासुर के दिव्य गुण और श्लोक संख्या 19। मेरे पीछे बोले सुरेश कस्मान नहिनो शिवज्रम पुरा स्थिते वैरणिमय मोघ मा संशयिष्ठा नगदेव वज्र श्याने सफला कृपणार्थे व्याच्या। सुरेश कस्मान नहलोसि वज्र पुरास्थिते वैरिणिमय मोघ मा संशयिष्ठा नगदेव वज्र श्याने सफला कृपणार्थे व्याच्या। सुरेश कस्मान नहिनोसि वज्र पुरास्थिते वैरिणिमय मोघ मा संशयिष्ठा नगदेव वज्र श्याने सफला कृपणार्थे व्याच्या। बोलिए शब्दार्थ बोलिए। सुर ईश हे देवों के राजा कस्मात क्यों ना नहीं हिनोसि छोड़ते वज्रम वज्र पुरा स्थिते तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ बैरिणी तुम्हारा शत्रु मई मुझ पर अमोघम ना चूकने वाला वज्र मा मत संशयिष्ठा संदेह करो ना नहीं गदा एव गदा के समान वज्रहा वज्र स्यात् हो सकता है निष्फलहा बेकार कृपणा कंजूस व्यक्ति से अर्था धन के लिए इव सदृश याच्या याचना। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे स्वर्ग के राजा इंद्र तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। यहाँ जो बात है वो कौन कह रहा है? वृत्रासुर। वृत्रासुर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? इंद्र से कह रहे हैं, है ना। तो जो हो रहा है वृत्रासुर का इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है, धृतराष्ट्र के जो सैनिक हैं वो सब भाग गए, देवताओं की शक्ति से पराजित होकर के धृतराष्ट्र के सैनिक असुर सब जो है भाग गए। धृतराष्ट्र केवल हैं जो भागे नहीं हैं, तो कोई बिरले ही ऐसे वीर होते हैं जो कि युद्ध से भागेंगे नहीं, चाहे शरीर छूट जाए युद्ध से नहीं भागेंगे, है ना। जैसे गीता में भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्सि स्वर्गम, कि अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्षसि महिम, और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, है ना। तो यहाँ जो धृतराष्ट्र का जो भाव है वो ये है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग तो है ही है, स्वर्ग में तो है ही है, लेकिन धृतराष्ट्र तो भगवान के वैकुंठ में जाना चाहते हैं। तो किसी वीर जो युद्ध कर रहा है, किसी वीर की अगर भौतिक इच्छा नहीं है तो युद्ध में मारा जा करके वो वैकुंठ में जा सकता है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति कम से कम तो है ही है, चाहे जितना भी पापी हो अगर युद्ध में वो सामने से मारा जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति कम से कम तो होती ही है, बहुत पापी होने के बावजूद भी। लेकिन अगर भौतिक कामना नहीं है तो वैकुंठ में जा सकते हैं, तो धृतराष्ट्र के अंदर भौतिक कामना नहीं है, है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे, सबसे पहला शब्द क्या है, सुरेश, है ना। तो धृतराष्ट्र संबोधित कर रहे हैं इंद्र को, क्या कह के, सुरेश कि देवताओं के ईश्वर, तुम देवताओं के राजा हो, तो हे इंद्र है, कस्मात् न हिनोसि वज्रम, किस लिए तुम वज्र नहीं मारते हो, तुम किस लिए वज्र नहीं मारते हो, है ना। देखो कोई व्यक्ति अपने शत्रु को ऐसा कहेगा क्या, नहीं कहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु को नहीं कहेगा कि तुम जो है अपना वज्र मारो मुझे, कोई नहीं कहेगा। और इंद्र जो है घबराए हुए हैं, हाथ में वज्र तो है लेकिन घबराए हुए हैं धृतराष्ट्र के, क्योंकि इंद्र ने जो है जब गदा का प्रहार किया था धृतराष्ट्र के ऊपर, तो धृतराष्ट्र ने बाएं हाथ से ही पकड़ लिया गदा और उसी से ही जो है इंद्र के हाथी पर प्रहार कर दिया, तो इंद्र के हाथी जो है 14 गज पीछे हट गया और गिर गया, इंद्र भी गिर गए। फिर धृतराष्ट्र ने स्वयं ही प्रहार नहीं किया, क्यों, उसके अंदर दया है, उसके अंदर दया है। और इंद्र अब जो है खड़े हैं और हाथी को जो है इंद्र ने अपने हाथ से सहला दिया तो घाव ठीक हो गया, इंद्र के हाथ में अमृत का स्राव होता है, जैसे हमारे हाथ में पसीना आता है ना, है ना, तो उसी प्रकार से इंद्र के हाथ में जो है अमृत निकलता है। तो धृतराष्ट्र ने जो है उस समय युद्ध बंद कर दिया था कि इंद्र संभल जाए, तब तक इंद्र को अवसर मिल गया तो हाथी के ऊपर जो है अपना हाथ जो है फेर दिया, तो हाथी जो है स्वस्थ हो गया, उसका घाव ठीक हो गया। और अब इंद्र जो है घबराए हुए हैं, खड़े तो सामने हैं लेकिन घबराए हुए हैं धृतराष्ट्र से तो धृतराष्ट्र जो है इंद्र का भय दूर कर रहे हैं, है ना। ये है महानता, ऐसे भी जो है मतलब महान पुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, है ना। और ये भक्त ही होते हैं ऐसे, भगवान के भक्तों में ही ऐसे गुण होते हैं। तो धृतराष्ट्र जो है इंद्र से कह रहे हैं कि सुरेश कस्मान न हिनोसि वज्रम, कि तुम वज्र को क्यों नहीं चला रहे, तुमने गदा क्यों चलाई, तुमने गदा चलाई और उसका जो है उल्टा परिणाम हो गया, तुम्हें उल्टा परिणाम मिल गया तो तुम वज्र चलाओ ना तो इंद्र धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि सुरेश कस्मान न हिनोसि वज्रम, पुरा स्थिति वैरिणी, मैं शत्रु हूं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, है? मैं तो नहीं भाग रहा हूं, तो तुम मारो। कौन व्यक्ति है जो मरने के लिए इतना उत्साहित हो, मृत्यु के लिए उत्साह किसका होता है, एक भक्त ही होते हैं, ऐसे भक्त ही होते हैं, है ना। पुरा स्थिति वैरिणी मई, मुझ पर, मुझ शत्रु के ऊपर जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अमोघम, ये वज्र तुम्हारा अमोघ है, अमोघ है, अमोघ का मतलब है कि व्यर्थ नहीं जाने वाला। जैसे गदा तुमने चलाई तो व्यर्थ चली गई, है ना। तो इस प्रकार से जो वज्र है ये अमोघ है ना। मां संश्रेष्ठा, संशय ना करो, क्या न गदे में वज्रा, कि गदा की तरह जो है ये वज्र भी क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। गदा क्या हो गई, निष्फल हो गई। निष्फल का तो मतलब है कि कोई फल नहीं मिला, लेकिन यहां तो उल्टा फल मिल गया। क्या उल्टा फल मिल गया? कि जब मारी तो वृत्रस ने हाथ में पकड़ ली और उल्टा मार दिया, तो और उल्टा जो है मतलब फल मिल गया, है ना। तो ये गदा की तरह जो है निष्फल नहीं होगी, ना उल्टा फल देगा, क्या वज्र। कृपणार्थे वे याचिया, कृपणा, कृपण कंजूर से अगर जो है आप धन मांगे, याचना करें, तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। कृपण से आप जो है कुछ धन की याचना करते हैं तो नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, है ना। और गदा, गदा ने जो है इसी प्रकार से तुम्हारे साथ काम किया है। गदा कृपण है, तुमने गदा से चाहा कि कुछ अर्थ हो, मतलब शत्रु को जो है कुछ पीड़ा पहुंचे, तो तुम्हारी गदा ने शत्रु को पीड़ा नहीं पहुंचाई, ये कृपण है। तुमने जो याचना की इससे, वो इसने याचना पूरी नहीं की, बल्कि और उल्टा कर दिया। जैसे कंजूस, बहुत कंजूस होता है तो वो जो है आप उससे मांगेंगे तो उल्टे आपसे मांगेगा और आपसे छीन लेगा और उल्टा कर देगा काम, है? तो यहाँ तो गदा ने उल्टा काम कर दिया, है। कृपण तो जो है भाई देता नहीं पैसा बस, लेकिन जो बदमाश होता है उससे आप मांगेंगे तो देगा तो कुछ नहीं, बल्कि उल्टा छीन लेगा। तो गदा तो बदमाश निकली, गदा तो बदमाश निकली, है। कि तुमने जो चाहा कि ये गदा जो है तुम्हारे शत्रु का अनिष्ट करे, तो तुम्हारा ही अनिष्ट कर दिया इसने, उल्टा कर दिया। तो वो कह रहे हैं, वृत्रासुर कह रहे हैं कि गदा की तरह जो है ये वज्र जो है नहीं है। वज्र जो है बहुत उदार है। उदार का मतलब तुम चाहोगे शत्रु का जितना अनिष्ट करना उतना अनिष्ट कर देगा और नष्ट कर देगा, शत्रु का विनाश कर देगा। ये वज्र जो है इस प्रकार से है। तो ये जो है बात वृत्रासुर कह रहे हैं इंद्र से। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब इंद्र ने अपनी गदा वृत्रासुर पर चलाई थी तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का वो आक्रमण बुरी तरह निष्फल हुआ, बुरी तरह निष्फल हुआ, है ना। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया और 14 गज पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृत्रासुर पर वज्र छोड़ने जा रहे थे, किंतु उन्हें संदेह था कि कहाँ कहीं गदा के समान ये वज्र भी बेकार ना जाए। किंतु वृत्रासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया कि ये वज्र निष्फल नहीं होगा। वृत्रासुर वैष्णव है इसलिए विश्वास दिलाया। वैष्णव को जो है भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास है, है ना। और भगवान विष्णु ने ही आदेश दिया था देवताओं को कि वृत्रासुर का वध करने के लिए और कोई हथियार काम नहीं आएगा, केवल वज्र। और वो वज्र कैसे प्राप्त होगा, दधीचि मुनि के पास जाइए, उनसे याचना करिए, वो अपना शरीर छोड़ेंगे, फिर उनकी हड्डियों का विश्वकर्मा वज्र बनाएंगे। वो वज्र बन करके तैयार हो गया, है ना। और इंद्र को संशय हो रहा उस वज्र, क्यों, इंद्र वैष्णव नहीं है, इंद्र को भगवान में इतना विश्वास नहीं है। वृत्रासुर वैष्णव है, तो वृत्रासुर को पता है कि अगर भगवान ने ऐसा कहा है कि इस वज्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी, तो इसमें कोई संशय नहीं है, मास है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वृत्रासुर वैष्णव है, है? तो वैष्णव होने के कारण यहां है, वैष्णव होने के नाते इंद्र को विश्वास दिलाया, किसने, वृत्रासुर ने विश्वास दिलाया कि वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है, भगवान विष्णु। तो वृत्रासुर को भगवान से कोई शिकायत नहीं है कि भगवान ने कहा कि वृत्रासुर का वध करने के लिए तुम वज्र बनवाओ, बल्कि वृत्रासुर को उत्साह है कि भगवान ने अगर आदेश दिया है इस वज्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा भगवान ने कहा, ये वैष्णव होते हैं। जो असुर लोग होते हैं वो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा उल्टा करना चाहे उसको उल्टा करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जो वैष्णव होते हैं तो उनको जो है जीवन और मरण सब बराबर है, वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं और मृत्यु में भी उनका पूरा लाभ है। वृत्रासुर को तो मृत्यु से ज़्यादा लाभ दिखाई पड़ रहा है, मृत्यु में ज़्यादा लाभ दिखाई पड़ रहा है कि मैं वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा करूं, तो वो तो और ज़्यादा उत्सुक हैं मरने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए। ये वैष्णव, वैष्णव शरीर से ऊपर उठे होते हैं, है ना। ये बहुत मतलब दिव्य चरित्र है वृत्रासुर का। तो यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं कि वैष्णव होने के नाते इंद्र को विश्वास दिलाया कि वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वे समझ नहीं सके कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती। तो विष्णु को कौन समझ सकता है? वैष्णव ही समझ सकते हैं, जो वैष्णव नहीं है वो नहीं समझते। इंद्र तो वैष्णव है, देवता सब वैष्णव, नहीं शुद्ध वैष्णव नहीं है। देवता तो भगवान के भक्त हैं, है? असुर जो है भगवान के शत्रु होते हैं। असुरों में भी कोई मतलब ऐसे भक्त निकल जाते हैं जो देवताओं से आगे हो जाते हैं भक्ति में। तो वृत्रासुर कैसे असुर है? जो शुद्ध वैष्णव, असुर होते हुए भी शुद्ध वैष्णव है, और वो जो है विश्वास दिला रहे हैं, है ना, क्योंकि वृत्रासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित थे। वृत्रासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक थे। उनको उत्सुकता है कि भगवान की जैसी इच्छा है तो वो यथाशीघ्र पूरी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके भगवान की इच्छा पूरी हो, उत्सुक है, उत्सुक है, है ना, क्योंकि उन्हें विश्वास था किस प्रकार वे भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। वे तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब वज्र छूटे, कब वज्र छूटे। इसलिए वृत्रासुर जो है पहले तो बड़े कठोर वचनों से इंद्र को उन्होंने डांटा कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। चार श्लोक वृत्रासुर जो बोले हैं वो ऐसे बोले कि मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम बड़े पापी हो, तुमने मेरे भाई की हत्या की है, सब कुछ डांटा। लेकिन जब वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र जो है और डरता जा रहा है, तो फिर दूसरे प्रकार से बोलने लगे वृत्रासुर। कभी कभी जो है अपने शत्रु को जब आप बहुत डांटते हैं तो उसको और गुस्सा आता है युद्ध करने में, और मतलब जल्दी ही वो जो है अपने शत्रु का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वृत्रासुर ने पहले बहुत निंदा की इंद्र की और डांटा कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, मैं तुम्हारा वध करूंगा, ऐसा कह करके। लेकिन जब देखा वृत्रासुर ने कि वो तो और डरता जा रहा है, तो फिर वृत्रासुर ने दूसरी नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई? कोमलता की नीति अपनाई। लेकिन हर प्रकार से वृत्रासुर ही चाहते हैं कि वो शरीर छोड़ के भगवान के धाम में जाए। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि वे तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। शत्रु को मारना चाहिए, तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुम तुरंत पूरा करो। तुम जो चाहते हो, क्या विजय चाहते हो, स्वर्ग को भोगना चाहते हो, तो मुझे मार करके तुम्हें भी विजय मिलेगी और स्वर्ग का भोग मिलेगा, और मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर करके वैकुंठ में जाऊँगा, भगवान की सेवा में लग जाऊँगा, दोनों कार्य हो जाए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर ये समझना है कि जिस प्रकार तुम्हारी इच्छा है स्वर्ग जीतने की, उसी प्रकार मेरी इच्छा है मरने की। तुम्हारी इच्छा है स्वर्ग भोगने की और मेरी इच्छा है वैकुंठ में भगवान के चरणों की सेवा करने की, तुम्हारी और मेरी दोनों की इच्छाएं पूरी हों, तुम क्यों विलंब कर रहे हो? परंतु मेरा वज्र व्यर्थ हो सकता है। इंद्र सोच रहे हैं मेरा वज्र व्यर्थ हो सकता है। इंद्र को बड़ा संदेह हो गया है, इंद्र को बड़ा संदेह हो गया कि मेरा वज्र व्यर्थ हो सकता है, जैसे गदा व्यर्थ हो गई। तो वो क्या करें, अमोघम शब्द है ना, अमोघम, अमोघम का मतलब है ये व्यर्थ नहीं जाएगा है, अमोघ है। यदि मेरा वज्र तुम्हारे हाथ में आ जाए, इंद्र ने जब गदा मारी थी ना तो गदा वित्रासुर के हाथ में आ गई थी, तो इंद्र क्या सोच रहे हैं कि मैं अगर वज्र मारूं तुम्हारे हाथ में वज्र आ जाए है और तुम फिर मेरे ऊपर प्रहार कर दोगे उस वज्र का है। तो वित्रासुर कह रहे नहीं, संशय मत करो, संशय मत करो है ना। तो यहां जो है वित्रासुर पूरा विश्वास दिला रहे हैं, पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है और वज्र के द्वारा तुम्हारा जो है मतलब कार्य सफल हो जाएगा है ना। तो ये जो है वृत्रासुर की भावना है। इस कथा में वृत्रासुर का इतना गुण और आगे भी और जो वर्णन आएगा कि इंद्र को जो है आत्मज्ञान भी देंगे, आगे चल करके इंद्र को आत्मज्ञान भी देंगे। तो फिर परीक्षित महाराज आगे चल करके पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से कि एक असुर होते हुए कोई व्यक्ति इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है, इसका क्या रहस्य है? तो फिर वृत्रासुर के पिछले जन्म का वो जो है वृत्तांत सुनाएंगे सुखदेव गोस्वामी कि ये महाराज चित्रकेतु थे और इनको कैसे भगवान की बहुत बड़ी भक्ति प्राप्त हुई, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया असुर बनने का, लेकिन असुर के रूप में भी इनको क्रोध नहीं आया। पार्वती को भी श्राप दे सकते थे, उल्टा श्राप भी दे सकते थे, इनको क्रोध नहीं आया और असुर बनने का श्राप इन्होंने स्वीकार कर लिया और इनको जो है पूरा आत्मज्ञान था और ये जो है भगवान के जो है चरणों में पूरी तरह से समर्पित थे है ना। तो इस तरह की बातें जो है मतलब इसमें आती हैं। तो इसके पहले की जो कथा है वो ये है कि विश्वरूप, बल्कि और पहले से अगर हम जाएं तो कथा को जो है दोबारा पुनरावलोकन कर लिया जाए कि इंद्र जो है अपनी सभा में बैठे हैं और उनके सामने सब नृत्य हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र के अंदर क्या भाव है कि भाई मैं ही क्या हूँ, भोगता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इस प्रकार का भाव इंद्र के अंदर है। और उनके गुरु बृहस्पति आए उस सभा में, तो इंद्र अब सोचते हैं कि अगर मैं खड़ा होऊंगा अपने गुरु के सामने तो मेरी महिमा घट जाएगी, मेरी कितनी महिमा है यहाँ, मेरी महिमा घट जाएगी। तो इंद्र नहीं खड़े हुए और बृहस्पति ने देखा कि इंद्र के अंदर इस प्रकार का उल्टा भाव है तो वो छोड़ के चले गए, अंदर आए नहीं, अंदर आना चाहते थे और इंद्र ने देख लिया तो फिर वापस लौट गए। और जब वापस लौट गए तब इंद्र को फिर बड़ा मतलब पश्चाताप हुआ कि मेरे गुरु जो है मेरे से रुष्ट हो गए हैं। और फिर गुरु को मनाने के लिए गए इंद्र, तो उनके घर गए तो अपने घर से भी अंतर्धान हो गए और गुरु का पता नहीं चला। इंद्र के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि गुरु अगर जो है अंतर्धान हो जाए तो उनको ढूंढ पाए। तो फिर ब्रह्मा जी, फिर असुरों को जब पता चला कि अपने गुरु को इन्होंने रुष्ट कर दिया है तो असुरों ने जो है आक्रमण किया और स्वर्ग छीन लिया। तो उस समय फिर सब देवता असुरों से हार करके ब्रह्मा जी के पास आए, तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब क्या हो सकता है, ठीक है इंद्र के बड़े भाई त्वष्टा हैं तो उनके जो पुत्र विश्वरूप हैं यानी इंद्र के भतीजे, तो उनको जो है अब गुरु बनाओ और उनके द्वारा जो यज्ञ होंगे उनसे जो है तुम्हें फिर विजय प्राप्त होगी। तो विश्वरूप को गुरु बनाया, पुरोहित बनाया और विश्वरूप ने जो है फिर इंद्र की संपत्ति वापस दिला दी, स्वर्ग में विजय प्राप्त हो गई इंद्र को। और फिर आगे चल करके इंद्र ने देखा विश्वरूप को कि विश्वरूप जो है कुछ गुप्त रूप से आहुतियां डालते हैं असुरों के नाम से, क्योंकि उनकी जो माता है वो असुरों के परिवार की है, विश्वरूप की माता। तो इंद्र ने जब ये देखा कि विश्वरूप हमारे साथ धोखा कर रहा है तो विश्वरूप का सिर काट दिया, है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में जब त्वष्टा को जब पता चला कि इंद्र ने जो है मेरे पुत्र का सिर काट दिया है, जबकि पहले अपना गुरु बनाया था और सिर काट दिया है, तो त्वष्टा ने फिर एक यज्ञ किया जिसमें मंत्र पढ़ा था, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो। तो उस यज्ञ में आहुति जब डाली तो यज्ञ कुंड से ही वृत्रासुर का आविर्भाव हुआ। और इंद्र शत्रु ये जो शब्द है इसका उच्चारण अलग अलग प्रकार से करने में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इंद्र शत्रु का एक उच्चारण ऐसा होता है जिसमें अर्थ निकलता है कि जो इंद्र का शत्रु है, यानी जो इंद्र का वध करे, इंद्र शत्रु का। और दूसरे प्रकार का उच्चारण होता है तो उसका अर्थ होता है कि जिसका इंद्र शत्रु है, जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। तो त्वष्टा ने जो है इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण किया जब मंत्र में, तो कुछ इस तरह से उच्चारण किया कि जिसका अर्थ क्या निकला कि जिसका शत्रु इंद्र होगा, इंद्र जिसका शत्रु होगा, यानी जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। तो वृत्रासुर को जो है त्वष्टा ने आदेश दिया, अब ये वृत्रासुर जो है त्वष्टा के ही पुत्र माने जाएंगे, हालांकि यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे तो त्वष्टा के ही पुत्र हैं वृत्रासुर। और वृत्रासुर को आदेश दिया कि तुम जो है इंद्र का वध करो, क्योंकि इंद्र ने तुम्हारे बड़े भाई का वध किया है। तो वृत्रासुर जो है इस प्रकार से युद्ध करने के लिए आए हैं इंद्र से। और जब देवताओं ने जो है ऐसा युद्ध किया असुरों के साथ कि असुरों के जितने आयुध हैं वो सब नष्ट हो गए, और असुरों ने जितने अपने हथियार फेंके देवताओं की तरफ, देवताओं ने उन हथियारों को नष्ट कर दिया। तो फिर जितने असुर हैं सब भाग गए, केवल वृत्रासुर अकेले रहे। और वृत्रासुर असुरों को समझाते हैं कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, दो प्रकार की मृत्यु सबसे बढ़िया होती है, एक तो कोई वीर योद्धा सामने से अगर मारा जाए तो उसको मृत्यु मिलती है, अपनी इच्छा के अनुसार लोक में जा सकता है। और दूसरी मृत्यु होती योगी लोग जो श्वास को रोक करके और अपने प्राणों को ऊपर चढ़ाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, वो भी किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो वृत्रासुर समझाए, लेकिन असुरों ने वृत्रासुर की बात नहीं मानी, वो जो है भाग गए। तो यहां पर वृत्रासुर बिल्कुल अकेले हैं, और एक वृत्रासुर ही हैं ऐसे जो कि जीने और मरने में कोई अंतर नहीं समझते हैं, युद्ध में जो है उनको जो है मतलब इस प्रकार का भाव है जैसे अर्जुन का भी इसी प्रकार का युद्ध है, महाभारत के युद्ध में हो या और भी पहले के जितने युद्ध हुए अर्जुन के, तो अर्जुन कभी युद्ध से भागे नहीं, अर्जुन कभी युद्ध से नहीं भागे। तो ऐसे बहुत कम योद्धा होते हैं कि जो युद्ध से ना भागे हैं, यहाँ तक कि भीमसेन को भी कभी भागना पड़ा, भीष्म देव बहुत वीर हैं लेकिन वो भी, उनको भी जो है कभी युद्ध छोड़ना पड़ा, द्रोणाचार्य को युद्ध छोड़ना पड़ा, तो सबको युद्ध छोड़ना पड़ता है, युधिष्ठिर महाराज को भी युद्ध छोड़ना पड़ा, है ना, पीछे हटना पड़ा। लेकिन एक अर्जुन है जो कि युद्ध से कभी पीछे नहीं हटे, है ना। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि युद्ध से पीछे ना हटें, है ना। और युद्ध में जो है मृत्यु का उसी प्रकार से वर्णन करते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा किसी को पुरस्कार मिलने वाला हो, है ना। तो वृत्रासुर जो है इसी प्रकार के जो है योद्धा हैं, ऐसे वीर हैं, है ना। तो बहुत कम होते हैं ऐसे वीर, है ना। और जो युद्ध में शरीर छोड़ता है तो उसकी जो है अगर भौतिक कामना नहीं है तो वैकुंठ में जाएगा, इस युद्ध के द्वारा जब वो सामने से मारा जाता है तो वैकुंठ में जाता है, लेकिन अगर भौतिक कामना है तो स्वर्ग की प्राप्ति कम से कम होती है। तो जैसे कौरव थे, दुर्योधन, दुशासन, इन्होंने बहुत अन्याय किया, बहुत अन्याय किया, मतलब कोई सीमा नहीं कितना अन्याय किया। इनकी पत्नी, पांडवों की पत्नी का जो है अपमान किया, वस्त्र सभा में, भरी सभा में, सब राजाओं की सभा में नग्न करने का प्रयास किया, तो भगवान ने रक्षा की, नहीं तो अपनी तरफ से इन्होंने बहुत ज़्यादा अन्याय, कोई सीमा नहीं है ना, जहर खिला करके मार डालने का प्रयास किया, और मकान में आग लगा करके मार डालने का प्रयास किया है? लेकिन युद्ध में मारे गए तो क्या हुआ कि स्वर्ग में गए। तो युद्ध में जो है मतलब सामने से मारा जाना एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है, बहुत बड़ा लाभ होता है इस तरह से। और अगर ये नहीं मारे जाए, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग अगर नहीं मारे जाएंगे युद्ध में, तो इनको जो है नरक की प्राप्ति निश्चित है, नरक में जाएंगे, है ना। तो ये जो है मतलब कुछ बातें हैं जो इस श्लोक में हमने चर्चा की हैं। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है विष्णुप्रिया ने किया है, तब सम्मुख हूँ खड़ा हुआ, शत्रु हूँ तुम्हारा देवेंद्र, क्यों नहीं छोड़ते अब मुझ पर तुम अपना यह अमोघ वज्र, निस्संदेह तुम जानो इंद्र, ज्यों तेरी गदा निष्फल हुई, कृपण से याचना के समान निष्फल यह वज्र नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ चर्चा की, तभी हमारे पास कुछ समय है, हम आप लोगों के साथ कुछ विचार करेंगे, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ। हाँ जी बोलिए, माइक है, हैंड माइक। आजकल का जो है ये युद्ध नहीं है, ये आतंकवाद कहलाता है, ये युद्ध नहीं है। आजकल जो युद्ध होते हैं ये युद्ध नहीं होते हैं, ये तो एक आतंक, मतलब ये है आतंक कहलाता है इसको, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो निर्दोष जनता है उसको ही मारा जाता है, निर्दोष जनता को मारा जाता है ना। तो बस यही होता है कि भाई हम तुम्हारे देश में जो है मतलब बम फेंकेंगे, गिराएंगे, मारेंगे, तो हमारे देश में मारो निर्दोष जनता, और जो लड़ने वाले हैं वो अपने सुरक्षित बैठे रहते हैं कि कोई मतलब ना हो, है ना। लेकिन यहाँ तो है, हाँ, जो लड़ने वाले मारे जाते हैं, सामने से मारे जाते हैं अगर उस तरह से युद्ध के, तो उनको तो सदगति मिलेगी और कम से कम स्वर्ग तो जाएंगे, अगर उनके अंदर भौतिक कामना है तो भी स्वर्ग जाएंगे, तो उनको तो मिलेगी सदगति। लेकिन जो राजा हैं या सेनापति हैं, पहले तो यही होता था कि राजा सेनापति मारे गए तो उसी से युद्ध समाप्त हो जाता था, कि भाई निर्णय हो गया, हार जीत हार का निर्णय हो गया, सेना जो है फिर युद्ध नहीं करती थी, सेना भागती थी, जीत हार का निर्णय हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जीत हार का निर्णय नहीं होता है, वो जो है उनके देश में फेंकते हैं बम, उनके देश में बम फेंकते हैं और मारा मारी इस तरह से निर्दोष जनता की करते हैं, है ना। तो ये तो जो है अधर्म ही है, ये धर्म युद्ध थोड़ी कहलाता है, ये तो सब अधर्म युद्ध है, है ना। लेकिन हाँ, सैनिक जो है अगर कोई है और सैनिक भाव में अगर वो युद्ध कर रहा है और मारा जाता है, तो उसका तो जो है सदगति होगी, है ना। वो किसी भी पक्ष में हो, अधर्म के पक्ष में हो या धर्म के पक्ष में हो, उसकी सदगति होती है युद्ध में अगर सामने से मारा जाता है। हाँ जी, हाँ, कविता, कविता उसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो वही उसी को ही पद रूप में लिखा है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, वो तो वही चीज है। हाँ जी,
पहले चतुर्युग के त्रेता युग के आरंभ में यही हुआ है,
अच्छा हाँ, ये जो वृत्रासुर और इंद्र का जो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये विचार करना पड़ेगा कि वृत्रासुर और इंद्र का जो युद्ध है ये किस समय हुआ। अच्छा लिखा है। अच्छा अच्छा ऐसा बताएंगे। नहीं, वो तो स्वर्ग में भी हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग में भी जमीन है ना, तो जैसे हम इसको पृथ्वी बोलते हैं उसको स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी तो जमीन है ना, और आकाश तो फिर उसके भी ऊपर आकाश है, तो ऐसे कुछ निश्चित नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी में ही हुआ, तो हम मानते हैं कि स्वर्ग में हुआ ना, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि स्वर्ग में हुआ, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी, इनका प्रश्न। हाँ, ये कथा बहुत विस्तार में आएगी आगे चल करके, बहुत विस्तार में आएगी, क्योंकि परीक्षित महाराज ये बताते हैं कि असुर की योनि में कोई पैदा हो और कोई जो है मतलब कैसे इतना बड़ा भक्त बन सकता है, तो ऐसा भी होता है कि कोई बहुत बड़ा भक्त हो लेकिन उसके कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं तो उसके अनुसार उसको जो है कोई शरीर, निकृष्ट शरीर भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो शरीर से जो है ऊपर उठे होते हैं। जैसे कि भरत महाराज, तो उन्होंने कितना मतलब भक्ति में आगे बढ़ गए थे, बहुत भक्ति में आगे बढ़ गए, हरण में फिर उनका कुछ आसक्ति हो गई तो हरण का शरीर मिल गया, हरण का शरीर मिल गया तो भी वो हरण की तरह व्यवहार नहीं करते थे, वो हरण की तरह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे थे, खाने सोने में अपना समय नहीं लगाते थे, तो वो गंडकी नदी के जल में खड़े होकर के उसी प्रकार से तपस्या करते रहे, फिर शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण के शरीर में आए तो उसमें भी बहरे गूंगे की तरह व्यवहार करते थे, तो ऐसे होता है, तो कोई दुर्घटना हो जाए या अपने प्रारब्ध के अनुसार वो कुछ शरीर प्राप्त हो जाए, तो आगे कथा बहुत विस्तार में आएगी कि महाराज चित्रकेतु जो है अपने पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पुत्र नहीं है, तो अंगिरा मुनि ने जो है उनको पुत्र प्रदान किया, और फिर जो उसकी जो सौतेली रानियां थीं उन्होंने राजा चित्रकेतु के पुत्र को जहर दे दिया, तो चित्रकेतु फिर बहुत शोक करते हैं, फिर नाराज जी उनको ज्ञान देते हैं, फिर इस तरह शंकरसन भगवान को प्रसन्न करते हैं, फिर शंकरसन भगवान की कृपा से इनको विमान प्राप्त होता है, विद्याधर का शरीर प्राप्त हो जाता है, और विमान इनके इच्छा के अनुसार चलता है, और बहुत सी स्त्रियाँ से घिरे हुए हैं, लेकिन ये आत्मज्ञान में इतने बढ़े चढ़े हैं, स्त्रियों के बीच में रहते हुए ये पूर्ण रूप से भगवान की कथाओं में जो है लगे रहते हैं। और शिव जी जो कैलाश पर्वत में थे तो अपनी पत्नी पार्वती को जो है गोद में लेटाए हुए हैं, और बहुत से महर्षि लोग उनको घेरे हुए हैं और आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने चित्रकेतु ने जो है उनको टोका कि ये तो शिष्टाचार नहीं है कि आप जो है अपनी पत्नी को गोद में इस तरह से लेटाए हुए हैं और इतने लोगों के बीच में। तो शिव जी तो बुरा नहीं माने और वो दोनों बातें समझ रहे, दोनों पक्षों की बातें समझ रहे थे कि इनका कहना भी ठीक है, लेकिन शिव जी की स्थिति बहुत ऊँची है तो वो किसी नियम में बंधे हुए नहीं हैं। तो फिर पार्वती को जो है फिर गुस्सा आया और पार्वती ने श्राप दिया कि तुम जो है असुर की योनि में जाओ, लेकिन इन्होंने पार्वती को भी जो है प्रणाम किया और श्राप नहीं दिया, और कहा कि आपने जो श्राप दिया है तो उससे मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रारब्ध के अनुसार ही आपने श्राप दिया है, तो मैं आपको फिर भी प्रसन्न करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। और शिव जी फिर पार्वती को समझाते हैं कि जब वो चला गया सांप लेकर के चला गया तो शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि देखो कैसी महिमा है वैष्णवों की, वो तुम्हें सांप दे सकता था, उसने तुम्हें सांप नहीं दिया, है ना। और फिर यही जो है राजा चित्र के तो ही वृत्रासुर के रूप में जन्मे पार्वती के श्राप से, लेकिन किसी भी योनि में मिले। तो जो भक्त लोग हैं यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी शरीर मिले, कहीं भी जन्म मिले, लेकिन आपकी भक्ति मिले मुझे, है ना। इस चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में जो बोलते हैं तो शिक्षाष्टक मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे दुखी भाई, कि कोई भी जन्म मिले, चाहे पशु पक्षी किसी भी अपने कर्म के अनुसार मिले, लेकिन भक्ति जो है हमारी बनी रहे, भक्ति की रक्षा होना चाहिए, बाकी जो है मैं कहीं भी चला जाऊं। तो ये जो है मतलब असली प्रार्थना ये होनी चाहिए हमारी कि हम किसी भी योनि में जाएं, कहीं भी जाएं, है ना। कुलशेखर भी प्रार्थना करते हैं, दिव्य वा भवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम, कि चाहे मेरा निवास स्वर्ग में हो और चाहे पृथ्वी में हो और चाहे नरक में हो। अब थोड़े शारदार विंदो चरणों ते मरण ये चिंतयामी, तो आपके चरणों का हमेशा मरण काल तक चिंतन करूं, बस केवल यही कर दो, ऐसा कर दो। तो ये जो है इनकी तीव्र प्रार्थना यही होती है जो बुद्धिमान होते हैं, तो वो भगवान से जो है एक यही प्रार्थना करते हैं, बाकी कुछ अंतर नहीं पड़ता, वैकुंठ में जाएं या पृथ्वी में रहें चाहे नरक में रहें, है ना। तो एक श्लोक भी है ना, अपि तुल्यार्थ दर्शना, कैसा है वो श्लोक, अपि तुल्यार्थ दर्शना, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना, कि जो नारायण के परायण है तो वे किसी भी बात से वो भयभीत नहीं होते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गाप वर्ग नरकेशु, स्वर्ग में रहें चाहे वैकुंठ में रहें चाहे नरक में रहें, अभी तो उनका बराबर स्वार्थ एक ही होता है कि कृष्ण का स्मरण करना। तो ये स्थिति जो है मतलब भक्तों की होती है। गीता में भगवान कहते हैं गुणाने तान अति तत्रीन देही देह समद भवान, कि वो शरीर में रहते हुए भी गुणों से अतीत हो जाता है, वो भौतिक प्रकृति के गुण उसको बांधते नहीं। सामान्य जीव जितने भी हैं सब शरीर से बंधे हुए हैं, और तीन गुण जो है जीव को शरीर से बांधे, जीव अविनाशी है और शरीर विनाशील है। तो अविनाशी जो नित्य जीव है वो अनित्य शरीर से कैसे बंधा है, तो प्रकृति के तीन गुण बंधे हुए है ना, और तीन गुणों के अनुसार प्रत्येक जीव को कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण के, तो वो इसी शरीर में ही रहते हैं, कोई भी शरीर हो उनका, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो या मनुष्य का शरीर हो, लेकिन वो गुणों से बंधे नहीं होते। गुणानेतान गुणातीत, गुणानेतान अतीत तत्रीन देही देह समद भवान, तो वो जो है इन तीन गुणों से अतीत होते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा दो खैर विमुक्त अमृतम, तो इस शरीर में ही वो जन्म मरण से मुक्त हैं। शरीर से बंधे होने के कारण ही शरीर के जन्म होता है तो आपको कष्ट होता है, शरीर से जो है बंधे होने के कारण ही शरीर की मृत्यु होती है तो आपको कष्ट होता है, बुढ़ापा शरीर में आता है तो आपको कष्ट होता है, क्योंकि शरीर से आप बंधे हैं। लेकिन जो गुणातीत होता है तो शरीर से बंधा नहीं है, शरीर में ही है, शरीर से बंधा नहीं है। तो जन्म मरण बुढ़ापा के बीमारी के कष्ट से वो मुक्त होते हैं। जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो अमृतम अश्म, अमृत प्राप्त करते हैं, अमृत प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से है कि जैसे सरकारी आदमी जो है अगर जेल के अंदर भी रहे तो जेल में भी उसको पूरी सुविधा मिलेगी, वैसे ही जैसे जेल के बाहर। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो जेल के अंदर आता है तो अलग अनुभव करता है और जेल के बाहर अलग अनुभव करता है। जेल के अंदर आता है तो उसको जो है कष्टों से उसको बांधा जाता है, कष्ट दिए जाते हैं। लेकिन सरकारी आदमी है, सरकार के आदेश के अनुसार वो जेल के अंदर अगर रहे तो जेल के अंदर भी उसको वही सुविधाएं मिलेंगी जेल के बाहर, कोई अंतर नहीं। तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, तो ये हमें वो शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। अहेतु की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि मम जन्म नि जन्म ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तु, अहेतु की भक्ति मेरी बनी रहे। तो जन्म जन्म, तो जन्म मरण का हमें कोई कष्ट नहीं है। तो अहेतु, अहेतु की भक्ति की जो है ऐसी महिमा है कि ये नहीं कि भाई मृत्यु के बाद ही हम वैकुंठ में जाएंगे, आप इस शरीर में ही रह करके आप जो है वैकुंठ में ही हैं। जैसे सरकारी आदमी जेल के अंदर रहता है तो ही वो अपने घर की तरह है, उसको सब सुविधाएं मिलती हैं, अपने घर की तरह सब सुविधाएं मिलती हैं, सरकार की ओर से सब सुविधाएं मिलती हैं। तो उसके अंदर, उसके लिए क्या अंतर है, जेल के अंदर है जेल के बाहर है, क्या अंतर है ना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वो इस भौतिक जगत में भी रहें या आध्यात्मिक जगत में रहें, कोई अंतर नहीं है उनके लिए, है ना। अब धोरित सारदार विंदो चरणों तिमरणे भी चिंतयामी, तो आपके चरणों का चिंतन मैं मृत्यु काल तक करूं, जीवन और मृत्यु तो कोई अंतर ही नहीं है, जीवन में मृत्यु में कोई अंतर ही नहीं है, है ना। तो वो तो एक दूसरे प्रकार का सुख भोगते हैं, ये भौतिक जो सुख होते हैं ना तो उसमें उनको हर्ष होता है, हैं, और जो भौतिक दुख होते हैं ना उनको शोक होता है। ना प्रश्येत प्रियम प्राप्य नो विजित प्राप्य चा प्रियम, तो जो प्रिय हम लोगों को प्रिय लगता है उसको प्राप्त करके वो हर्षित नहीं होता, हमें जो अप्रिय लगता है उसको प्राप्त करके वो उद्विग्न नहीं होता, ठीक है ना। और कोई, अच्छा माता जी कोई, क्योंकि सब प्रभु जी तो कर रहे हैं, कोई माता जी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, इसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने जो कहा है योग क्षेम वहाम्य हम, इसका मतलब वो नहीं कि शरीर की रक्षा करेंगे, क्षेम का मतलब रक्षा है और योग का मतलब है प्राप्ति। तो शरीर की रक्षा के लिए भगवान ने वचन नहीं दिया कि हमारे शरीर की रक्षा करेंगे, हमेशा हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, क्षेम का ये मतलब नहीं है। क्षेम का मतलब ये है कि आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा भगवान करेंगे, आप भक्ति से ना गिरें, तो असली क्षेम तो यही है ना, है ना। नहीं तो शरीर तो छोड़ना ही है ना, और वो निश्चित हो चुका है, शरीर छोड़ना तो निश्चित हो चुका है ना। तो क्षेम का अगर असली अर्थ हम समझें तो क्षेम का मतलब यही है कि जैसे आप प्रचार में जाते हैं तो माया के बहुत से प्रलोभन मिलते हैं, है ना, लेकिन आप जो है उसमें नहीं गिरेंगे, आपकी रक्षा होगी, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है जब आंदोलन फैलाया तो पहले तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सोचा था कि स्त्रियों और पुरुषों को साथ साथ जोड़ा जाए, क्योंकि प्रभुपाद के गुरु महाराज थे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने मठ बनाए थे, तो गौड़ी मठ बनाए थे, तो उनमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, ब्रह्मचारी सन्यासी केवल वही रहेंगे, स्त्रियों का कोई प्रवेश नहीं है। तो प्रभुपाद ने जब देखा विदेशों में कि जो लड़के लड़कियां हैं वो तो स्वच्छंद मिलते हैं, है ना, तो ये संभव ही नहीं था कि जो है केवल ब्रह्मचारी सन्यासी बनाएं और स्त्रियों को दूर रखें। तो प्रभुपाद ने फिर ये किया कि उनको विधिवत विवाह में बांधा, विवाह के बंधन में बांधा, विवाह के अंदर ही जो है तुम्हारा संबंध होगा स्त्री पुरुष का ये, और ब्रह्मचारी हैं स्त्रियां हैं मंदिर में मतलब रहेंगे, हाँ, और कैसे रक्षा होगी, तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर नियमों का पालन करेंगे तो उनकी रक्षा होगी, है ना। तो यहाँ पर रक्षा का मतलब यही है कि माया का जो है असली जो है खतरा हमारे लिए माया का है, बाकी शरीर तो बूढ़ा होता ही है, शरीर में तो बीमारियां आती हैं, तो ये थोड़ी है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम भी 7 प्रकार की 8 प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, है ना। हाँ, लेकिन जैसे मेरे मंगल आरती का नियम है, मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं, तो मेरे नियम की रक्षा कर रहे हैं कि मैं मंगल आरती में पहुँच पाता हूँ। तो मैंने अगर नियम बनाया कि अष्टभ कैलाश वाले मंदिर में ही मंगल आरती करना है, तो कहीं भी मैं होता हूँ तो कृष्ण रक्षा करते हैं, तो इस नियम की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से जो है, जो रक्षा है वो आध्यात्मिक रक्षा है, आध्यात्मिक सुरक्षा तो भगवान करेंगे। तो ये जो है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इस जीवन के बाद आप गिरेंगे नहीं, आपको जो है सुरक्षा मिलेगी, है ना। अगर आप वैकुंठ में नहीं गए तो भी आपको दोबारा अवसर मिलेगा ऐसा कि आप भक्तों के समाज में रहेंगे और ये भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर आपको दिया जाएगा। और नहीं तो कहाँ आप गिर जाओगे, पता नहीं कहाँ आपका जन्म होगा, है कितने कौन से कीड़े और कैसे पशु पक्षियों के रूप में जन्म होगा आपका, और आप जो है बिल्कुल विस्मृत हो जाएंगे। तो ये नहीं है, है ना। बल्कि कुत्ते के रूप में भी अगर जन्म होगा तो वो कुत्ता भी जो है, मतलब कुत्ते भी भक्त होते हैं कई कुत्ते भी जो है कई भक्त होते हैं, है ना। तो वो भी जो है मंदिर के पास पड़े रहते हैं, जो प्रसाद फेंका जाता है वही खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, उनका नियम है प्रसाद ही खाएंगे। तो वो भी जो है भक्तों का संग किसी प्रकार से करते हैं। तो कीड़े के रूप में भी जो है, तो भक्तों ने ठाकुर भी कहते हैं, वैष्णव घर का मैं कीड़ा बनना पसंद करूंगा, ब्रह्मा अगर आपसे विमुख होकर के ब्रह्मा का जन्म मिले तो मैं नहीं चाहता। वैष्णव घर में कीड़ा, तो वैष्णव घर में कीड़ा बनने का मतलब वो वैसे कीड़ा नहीं है जो कि बिल्कुल विस्मृत हैं, बल्कि कृष्ण का स्मरण करेंगे। यहाँ पर वैष्णव घर में कीड़ा बनने का मतलब क्या है कि कृष्ण का स्मरण, वो कीड़े की चेतना ऐसी होना चाहिए, मुझे ऐसा कीड़ा बनाइए, अगर कीड़ा ही बनूं तो ऐसा कीड़ा बनूं कि आपकी चेतना में रहूं, कृष्ण चेतना में रहूं, तो ऐसा कीड़ा। वैष्णव घर में कीड़ा बनने का ये मतलब है। नहीं तो वैष्णव घर में बहुत से कीड़े होते हैं, उनकी चेतना तो दूषित है, लेकिन चेतना हमारी जो है मतलब शुद्ध बनी रहे, चाहे कीड़े के रूप में जन्म मिले। तो योगक्षेम का यही मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ माता जी, क्या बंद कर दिया? हाँ चल बोलो बोलो बोलो। देखिए, इसमें हमारी यही प्रार्थना होती है कि अभी हमें जो भक्ति मिल गई, कुछ तो भक्ति मिली, आप कुछ भक्तों के निकट आए, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ी, ठीक है, आप भक्तों के संग में जो आई हैं ये कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है, कृपा देखो जिसमें। और यही प्रार्थना करो कि ये जो है हमें, ऐसा हमें हमेशा मिलता रहे, भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे। तो कम से कम एक दिशा तो आपकी निश्चित रहेगी कि हम गिरे नहीं। आप भक्ति में 1% भी जो है आपको जो है कुछ मिला है भक्ति में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी इससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते कि इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तो यही हमारा जो है मतलब बना रहे, हम गिरे नहीं, ये ना छूटे। तो हमारी यही प्रार्थना होती है, हमारी यही प्रार्थना होती है कि अगला जो जीवन होगा तो उसमें हमें ऐसा ही जन्म मिले, भक्तों के समाज में जन्म मिले। तो भगवान क्या कहते हैं, अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम, तो योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। एतदि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, तो ये भी जन्म दुर्लभतर है, दुर्लभतर है। नहीं वो अलग बात है, दोबारा जन्म ना मिले वो तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर दोबारा जन्म मिले, है ना, तो हमें ऐसा जो माहौल मिले ये कितनी बड़ी बात है, ये भी सोचना चाहिए ना। अगर अगर हमें, हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम वैकुंठ में जाएं, और हम इतने योग्य नहीं हैं तो हमें कम से कम ये तो मिले, हैं, तो इसका इसका आप महात्म्य समझो, इसका ये भगवान की कृपा समझो, है? तो हमें भगवान की कृपा को ठुकराना नहीं चाहिए, हम इतने के लायक नहीं हैं। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम इतने भी लायक नहीं हैं कि हमें इतना मिलता, ये विनम्रता कहलाती है, ये भगवान की कृपा, इसको समझो, है ना। अगर हम कृपा भगवान की देखेंगे तो हमें और कृपा मिलेगी, तो हमें जो है मतलब ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा हुई कि हमें इतने वैष्णवों का संग मिला, हमें कथा सुनने को मिली, यहाँ कौन, यहाँ पर कौन आता है सुनने के लिए, कितने कम लोग हैं यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए, कितने दुर्लभ अवसर है ये, श्रीमद् भागवत के जो है शब्द आप लोग सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत के संदेश आप सुन रहे हैं, प्रभुपाद की कितनी कृपा है कि कितने मतलब फिर भी कितने लोग आ गए, है ना, कितने लोगों को जो है ये कृपा मिली है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्रीमद् भागवत का एक अक्षर भी जो है मतलब सुनने को मिल रहा है, ये देखना चाहिए, तो हमें ये देखना चाहिए, है ना। तो इसलिए मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति रहे, तो कि जन्म आपके तो दोबारा जन्म ना मिले, है ना, लेकिन ऐसा ऐसी जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की। शिक्षा से हम रोज हम लोग पाठ करते हैं मंदिर में, उसमें ये कौन सी संख्या का श्लोक है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, चौथा, चौथा है ना, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, जन्म जन्म मुझे आपके अहेतु की भक्ति प्राप्त, है ना। तो ये हमारी जो है प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। और उसमें जैसे परीक्षित महाराज थे, माता के गर्भ में भी थे, है ना, तो कितनी दिव्य स्थिति थी उनकी, परीक्षित महाराज की कितनी दिव्य स्थिति थी, माता के गर्भ में थे, हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मा छोड़ा, हैं, तो वो जो है जल गए, ब्रह्मा जल गए, लेकिन भगवान ने जो है उनकी रक्षा की, गर्भ के अंदर रक्षा की, है ना। तो ऐसे भी मतलब लोग होते हैं जो गर्भ के अंदर भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, तो वो गर्भ का वो कष्ट नहीं उनको भोगना पड़ता, आप समझ रहे माता जी, उनको गर्भ का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, गर्भ के अंदर थे माता, तो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, बोलते मैं बाहर नहीं आना चाहता, गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता, देखो मैं गर्भ से बाहर नहीं, क्यों, गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये जो है माता पिता के संबंध है सब जो है संबंध मेरे ऊपर बड़ा भार आ जाएगा, है? ये पिता है, ये माता है, है? मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता, ऐसे भी है ना, ठीक है ना। तो हमारी मतलब यही प्रार्थना होनी चाहिए कि अपने चरणों में जो है आपके चरणों में हमारा मन लगे, है ना, यही प्रार्थना होनी चाहिए कि जितना आपको मिल रहा है इसी में ही और जो है हमेशा मिलता रहे, यही प्रार्थना करो कि ये हमेशा ही मिलता रहे, और कुछ आगे नहीं मिल रहा है तो हमेशा ये तो मिलता मिले, ये कितना ज़्यादा है, ये यही कम नहीं है। अब इसको आपने कम माना, है ना, तो ये भगवान की कृपा को आपने जो है मतलब कम कर दिया, कम मान लिया, भगवान की कृपा को बहुत मानो कि हमारे पास इतनी भी योग्यता नहीं थी, कैसे मतलब हम आ गए यहाँ, ये हमारी जो है मतलब कृपा है, हमारा इसमें कोई योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं थी कि वैष्णवों के समाज में हम अभी बैठे हैं, हमारी योग्यता नहीं कि ऐसे वैष्णवों के बीच में हम जो है बैठे हैं, हम बैठने के लायक नहीं हैं यहाँ, हम आने लायक नहीं हैं, लेकिन हम भगवान ने इतनी कृपा करी कि हमें वैष्णवों के समाज में मतलब बैठने का अवसर मिला, है ना, यही है। प्रचेता लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, साक्षात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमा में है कर्म भी, जब तक आपकी माया से हम प्रभावित हैं और कर्मों के अनुसार भ्रमण कर रहे हैं, तावत भवत प्रसंगानाम संघर्षान्नो भवे भवे, तो आपके चरणों में आसक्त जो भक्त हैं उनकी संगति हमें जन्म जन्म मिलती रहे, ठीक है ना। तो ये कृपा हमें मांगनी चाहिए, हम इससे ज़्यादा योग्य ही नहीं हैं, ऐसा समझो कि हम वैकुंठ जाने के योग्य नहीं हैं, हम वैकुंठ जाके क्या वहाँ जो है और एक अशांति पैदा करें, तो क्यों हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाकर के हैं, जैसे कि हंसों के बीच में कौवा आ जाए तो हैं, तो हम वैकुंठ जाकर के क्यों वहाँ जो है उद्वेग पैदा करेंगे, हम कहाँ योग्य हैं वैकुंठ जाने के, है ना। तो हमें यहाँ पर कितनी कृपा हुई है कि भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की हमारे अंदर दीनता विनम्रता होनी चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको प्रसन्नता होगी। तत्प्रसादात परम शांति, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो आपको परम शांति प्राप्त होगी। वो हृदय में बैठे हैं, आपके भाव से, आपके भावना से प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी दीनता से प्रसन्न हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपको परम शांति प्राप्त होगी, आपका भय दूर हो जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो।